ओम शांति। उन्नीस महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ श्रीलंका गए थे। वो अपनी पत्नी को बा कहके पुकारते थे। तो जब वो वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी पत्नी को एक या दो बा कहा, तो जो मंच संचालक थे उनको लगा कि ये इनकी माता है, और उन्होंने परिचय में ये कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच महात्मा गांधी आए हैं और साथ साथ उनकी माता भी आई है। तो जो महात्मा गांधी के साथ साथी आए थे उनको बड़ी हलचल हो गई, ये कैसा परिचय दे दिया। परंतु जब महात्मा गांधी का टर्न बारी आई भाषण करने की, तो उन्होंने कहा आज जो मंच संचालन करने वाले ने मेरा परिचय दिया वो बहुत ही यथार्थ दिया। अभी तक कस्तूरबा मेरी पत्नी थी, परंतु कुछ सालों से अब वो मेरी माँ है। पहले मैं पत्नी के रूप में उसे देखता था, परंतु अब मैं उसे माँ के रूप में देखता हूं। एक स्त्री को माँ के रूप में देखना, वो भी धर्म पत्नी को, ये ब्रह्मचर्य की बड़ी ऊंची अवस्था है। और कुमार जीवन अर्थात संपूर्ण पवित्रता, जहां पर अपवित्रता का नाम निशान न हो और पवित्रता की यह इमारत बिना ब्रह्मचर्य के खड़ी नहीं रह सकती। ब्रह्मचर्य उसका बेसिस, आधार, नींव, फाउंडेशन है। तो इस कुमार जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, माया के नए नए रूप हमारे सामने आते हैं। तो आज की इस पट्टी का हमारा टॉपिक है माया के चेहरे, माया के भिन्न भिन्न चेहरे। तो ऐसे हम सात माया के रूप अभी देखेंगे। जिनको डायरी लेनी है अपनी, जो रखा था पेन पेंसिल ले सकते हैं। तो माया किस किस रूप से आती है, कैसे कैसे आती है, और कैसे उसके रूप सूक्ष्म होते जाते हैं, और कैसे ही पता ही नहीं चलता कि ये भी माया है, और हम फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये तो माया थी। शास्त्रों में एक सन्यासी का उदाहरण है, शायद कईयों ने सुना होगा। एक युवा ब्रह्मचारी, एक युवा योगी, जो एकांत में बैठकर तपस्या करता था। घने जंगल में सुबह से रात तक अल्पाहारी, और एक दिन एक ऋषि कन्या उस युवा सन्यासी को देखती है और उसके मन में लालसा जागती है कि इस योगी की मैं सेवा करूं, पर वो ये भी जानती है कि इसकी तपस्या भंग ना हो मेरी वजह से, और वो तपस्वी बहुत तपस्या कर रहा है, पर वो कन्या कुरूप है, और जब उसकी तपस्या से इंद्रलोक में हलचल होती है तो दिखाया है जब वो कन्या किसी सरोवर के पास जाती है और मुंह पर पानी छिड़कती है तो अचानक वो रूपवती बन जाती है। क्योंकि ऊपर काफी हलचल है देवलोक में और वो चाहते हैं कि इसकी तपस्या भंग हो जाए, पर उस कन्या को कुछ पता नहीं, और वो ऋषि कन्या उस सन्यासी की सेवा करती है, परंतु छुप छुप के। उसे ऐसा लगता है कि मैं इसे ना दिखाई दूं। उसके लिए फल रखती है, फूल रखती है, सामान रखती है और छुप जाती है हर दिन, और सन्यासी अपनी तपस्या में मगन है। धीरे धीरे उस कन्या को भी आभास हो जाता है कि मेरा स्वरूप तो बदल चुका है, इसलिए वो और ज्यादा ध्यान पूर्वक उसकी सेवा करती है ताकि उसकी दृष्टि मुझ पर ना पड़े। तो उसकी इस तरह सेवा करते हुए कई दिन बीत जाते हैं, और एक दिन जब वो फल रख रही होती है अचानक उस तपस्वी की आंख खुल जाती है और वो उसे देख लेता है और फिर आंख बंद कर देता है और वो कन्या वहां से चली जाती है। आत्मग्लानी से भर जाती है कि मैंने शायद इस तपस्वी की तपस्या भंग कर दी, परंतु अंदर उसे थोड़ी खुशी भी होती है कि उसने आखिर मुझे देखा तो सही, उसे आखिर पता तो चला कि उसकी जो सेवा कर रही थी वो मैं थी। मिश्रित भाव, एक तरफ खुशी कि उसने मुझे देखा और दूसरे तरफ दुख भी, आत्मग्लानी भी कि उसने मुझे नहीं देखना चाहिए था। और इसी आत्मग्लानी के भाव से वो रातों रात वो जंगल छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। सन्यासी फिर अपनी तपस्या में मगन है। धीरे धीरे अधिक से अधिक समय तपस्या में बिताने लगता है, अल्पाहार से जलाहार पर आ जाता है, और धीरे धीरे वो भी छोड़ देता है, केवल तपस्या करते रहता है सुबह से रात तक, रात में भी। और जब ऐसी घनघोर तपस्या होती है ऊपर, फिर से स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन डोलता है, और आखिर इंद्र आ जाता है और कहता है, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, किस लिए तपस्या कर रहे हो? क्या तुम्हें स्वर्ग का राज्य चाहिए? वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम्हारी जैसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। वो युवा सन्यासी आंख खोलता है और कहता है, मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए। इंद्र कहता है, फिर तुम तपस्या किस लिए कर रहे हो? क्योंकि तपस्या तो सब किसी ना किसी प्राप्ति के लिए करते हैं, तो क्या तुम्हें मोक्ष चाहिए? वो युवा कहता है, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। इंद्र आश्चर्यचकित होता है, फिर तुम्हें चाहिए क्या? तपस्या तुम किस लिए कर रहे हो? वो युवा सन्यासी कहता है, वो ऋषि कन्या कहाँ है? कहानी यहां पूरी हो जाती है। वासना सूक्ष्म है, बहुत गहरे तल पर बैठी है। कॉन्शियस माइंड का नहीं, सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। चेतन मन के तर्क, चेतन मन की समझानी अवचेतन तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए लंबा लंबा समय तक ज्ञान में चलने वाले भी डगमग हो जाते हैं, हिल जाते हैं। पवित्रता में प्रामाणिकता बहुत ऊंची अवस्था है। भारत के आदरणीय सम्माननीय एक नेता है अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा था, क्या आप ब्रह्मचारी हैं? वो ये भी कह सकते थे, आपको तो पता ही है, वो ये भी कह सकते थे या कुछ नहीं कह सकते थे या हंस दिए होते। किसी पत्रकार के प्रश्न का जवाब देना जरूरी नहीं है, वो किसी ना किसी रीति से इस प्रश्न का उत्तर टाल सकते थे कुछ भी कहकर, पर उन्होंने उत्तर दिया और जो उत्तर दिया वो उनकी प्रामाणिकता थी, इसलिए वो प्रिय भी है सबको। उन्होंने कहा, मैं अविवाहित हूं पर ब्रह्मचारी नहीं हूं, वासना है, सूक्ष्म है। 2 दिन पहले मुरली में था, आधा कल्प देह के प्रेम से हिरे हुए हो, विनाशी से प्यार करोगे तो विनाश होगा, अविनाशी से प्रेम करोगे तो अविनाशी बन जाओगे। देह विनाशी है फिर भी खींचते रहता है, कितना भी समझाओ उसको, उसके रास्ते बहुत सूक्ष्म है। डायमंड हॉल, इतने सारे दरवाजे, बाहर आंधी तूफान चल रहा है, सारे दरवाजे बंद है, एक ही दरवाजा खुला रखो बस, तो तूफान अंदर आएगा कि नहीं आएगा? एक ही खुला है, बाकी सब बंद करके रखे हैं, आएगा कि नहीं आएगा? धूल और मिट्टी आएगी, क्यों? हमने तो सारे दरवाजे बंद करके रखे, एक ही चालू रखा बस, जो चालू रखा उसी से आएगा। जिस संबंध को सेवा का नाम दे रखा, शायद वो सेवा न होकर अंदर कुछ और है। जिसे प्रेम कहा वो शायद कुछ और है, ये भी हो सकता है। तो इस माया के 7 रूप हम देखेंगे, 7 चेहरे, ए बी सी डी ई एफ जी। ए अर्थात अवज्ञा, माया का पहला रूप है अवज्ञा, श्रीमत की सूक्ष्म अवज्ञा करना, अर्थात दुख को निमंत्रण देना। श्रीमत है, तुम्हें सिनेमा नहीं देखना है, देखा दुख प्रवेश करेगा, चित्र मूर्ति चलचित्र देह का प्रदर्शन, वस्तु वस्त्र, वीडियो ऑडियो डांस सॉन्ग, कुछ भी ट्रिगर बन जाएगा अंदर में छिपी हुई वासना को बाहर निकालने का। इसलिए मैं क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, आंखों से किस चीज का सेवन कर रहा हूं, यदि अब तक भी स्वप्न पवित्र नहीं तो जरूर दिनचर्या में कहीं ना कहीं से विकारों की प्रवेशता है। वो सन्यासी इतनी तपस्या कर रहा था और एक ही बार उसने आंख खोली थी और वो एक सूक्ष्म वासना अंदर बैठ गई, फिर वो इतनी सारी तपस्या, और इतने जो गांव खड़े किए ज्ञान और योग के, एक आंधी आई और चले गए, डूब गए। रावण का पहला भूत काम है, परसों की मुरली में था, सबसे बड़ा शत्रु काम है, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं। इसके लिए साधना एक ही है बस, ब्रह्मचर्य, और कोई साधना है ही नहीं। जिसने इसको साधा, जीवन सफल। जो इसमें एक कदम आगे और एक कदम पीछे, फिर एक कदम आगे और फिर एक कदम पीछे, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल ज्ञान में, परंतु है वही जहां से यात्रा चालू की थी, क्योंकि बंधे हुए हैं। ये अवस्था उन मित्रों जैसी है जिन्होंने बहुत शराब पी ली और सोच चलो घूमने जाते हैं, समुद्र के तट पर पहुंचे, नाव टंगी हुई थी, लटकी हुई थी, सब बैठ गए और रात भर नाव खेते रहे और बहुत आनंद का अनुभव किया, और सुबह होते हुए उनको लगा कि पता नहीं कहां पहुंच गए होंगे, पर सुबह जब देखा तो कहां थे, वहीं थे। क्यों? क्योंकि वो जंजीर, वो लंगर खोलना ही भूल गए। कहीं हमारी स्थिति उनके जैसी तो नहीं? सेवाए की, मुरली सुनी सुनाई, अमृत वेला किया, बहुत कुछ किया, परंतु एक विकार ने जकड़ा है, एक विकार पकड़े हुए है। शायद वहीं फंसे रहेंगे। सबसे पहला रूप है माया का, सूक्ष्म अवज्ञा। कौन सी वो बात है, कौन सी वो श्रीमत है जो मैं सूक्ष्म रीति से हर रोज तोड़ता हूं, उसकी चेकिंग करनी है गहराई से। मुरलियों में ये बातें आई है। मैं कितना फॉलो कर रहा हूं, अवज्ञाओं की लिस्ट, डिसओबीडियंस की लिस्ट बनानी है। दूसरे क्या करते हैं उससे मेरा कोई मतलब नहीं। आज की मुरली में है, दूसरों के अवगुण देखो ही नहीं, खामियां देखो ही नहीं, और दूसरों की खामियां तुमको समझ में भी नहीं आएगी क्या है, बड़ी मुश्किल है समझना। हम केवल अपने आप को समझ सकते और किसी और को नहीं। और ये समय अभी चला गया दूसरों को ठीक करना, करेक्ट करना। तुम ठेकेदार नहीं, ठेकेदार मैं हूं। रिजाइन एज द जनरल मैनेजर ऑफ द यूनिवर्स। किसका क्या ठीक करना है, क्या ठीक नहीं करना, ये तुम्हारा काम नहीं है। इस पद से इस्तीफा दे दो। मैं इसको ठीक करता हूं, उसको ठीक करता हूं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, मुझे एक ही व्यक्ति को ठीक करना है। वो कौन? मैं स्वयं। अब क्या उसको ढूंढना है, और क्यों हो रही है वो अवज्ञा, कारण क्या है? अवज्ञा सूक्ष्म, बाबा की श्रीमत है, अमृत वेला शक्तिशाली करो। परंतु पुरुषार्थ सुबह उठने का है ही नहीं, पुरुषार्थ है रात को जल्दी सोने का। और रात को जल्दी सोने के बीच कौन सी डिजिटल बाधा है, उसका चिंतन करना है, और वो क्यों है। तो अवज्ञा है। दूसरा है और सबसे महत्वपूर्ण बी, ब्रह्मचर्य भंग। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य भंग के 8 रूप बताए हैं। इनमें से किसी भी एक चीज, कोई भी एक चीज यदि हो रही है किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी स्थान पर, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस, ये तीनों घटक है, किसी भी समय, किसी भी स्थान और किसी भी समय पर, तो वो ब्रह्मचर्य का खंडन है। सबसे पहला दर्शनम, देखना। कोई स्त्री यदि दिख जाए तो वो स्वाभाविक है एक बार देखना, पर उसी स्त्री को दोबारा देखना इच्छा है, और उसी स्त्री को मुड़कर तीसरी बार देखना वासना है। दर्शनम, आज सुबह की साकार मुरली, भाई भाई की दृष्टि, तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, नहीं तो देह की तरफ आकर्षण जाएगा, ये काला, ये काली, ये गोरा, ये गोरी, देह खींचता है। आत्मिक दृष्टि, अव्यक्त बाप दादा कुमारों से मुलाकात 1972। शरीर सांप है, सांप में विष होता है, इसलिए बाप दादा सभी कुमारों से कह रहे हैं, आज के बाद देह रूपी इस सांप को स्पर्श न करना, इस देह रूपी सर्प को स्पर्श करना, हाथों से नहीं, दृष्टि और संकल्प से स्पर्श करना, अर्थात महा 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 पाप है। ये पाप की परिभाषा दी है, हाथ से स्पर्श करने के लिए नहीं कह रहे, किससे स्पर्श, दृष्टि से और संकल्प से। रामकृष्ण परमहंस की जब शादी हुई और पहली ही रात उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, मां शारदा से, क्या तुम मुझे गिराने आई हो? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आपको गिराने नहीं, मैं आपकी सहयोगी बनने आई हूं आपकी साधना में। और वो अपनी पत्नी की षोडशी पूजा करते हैं, जैसे मां वो दुर्गा है, जैसे इस दृष्टि से हम देख रहे हैं। ये भान ही चला जाए कि ये स्त्री है या ये पुरुष है, उससे परे। महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे हैं जंगल में, अर्ध आंखें खुली है, और कुछ पुरुष किसी स्त्री का पीछा कर रहे हैं, और वो स्त्री सामने से चली जाती है, वो आके पूछते हैं, क्या आपने किसी स्त्री को देखा? महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैंने यहां से जाते हुए तो देखा, पर वो स्त्री थी या पुरुष थी मुझे पता नहीं। निर्विकारी दृष्टि, ऐसी दृष्टि जिसमें शरीर का कोई ख्याल ही नहीं, कोई भान ही नहीं, और जितना शरीरों को देखोगे शरीरों की आकर्षण होगी, इसलिए शरीरों को देखना बंद, और शरीरों को देखना बंद अर्थात संसार के तुच्छ मनोरंजन। इसलिए ब्रह्मचर्य भंग में सबसे पहली बात है दर्शनम, दूसरा है स्पर्शनम, स्पर्श करना, हाथ, टच। गीता में लिखा है, ऑल टच बॉर्न हैप्पीनेस इस कंडीसिव टू पेन, जो जो सुख स्पर्श से उत्पन्न होता है वो अंततः दुख ही बनेगा। इंद्रिय इंद्रियों को जहां स्पर्श करेगी, इंद्रिय विषय को जहां स्पर्श करेगा, वहां पर परिणति दुख है। इसके लिए क्या हम स्पर्श कर रहे हैं, पहले देखना फिर स्पर्श करना, ये माया के ही रूप है। पापा ची वासना नको दाऊ दौड़ा त्याहुना आंधड़ाज बरामी, अपवित्र वचन नको माजा मुखे त्याहुना मुकाच बरामी। संत क्यों कह रहे हैं ऐसा, जानते हैं इंद्रियों का स्वभाव, जानते हैं दिवस रात्रा महायुद्धा सा प्रसंग, अंतर बाह्य जग आनी मन, दिन रात युद्ध है, क्योंकि इंद्रिय खींचती है, इंद्रिय विषय निरंतर संघर्ष है। निरंतर आकर्षण है, इनसे परे चले जाना, ये योगी की स्थिति है। देखना, दूसरा स्पर्श करना, तीसरा स्तुति, प्रशंसा, किसी एक ही व्यक्ति की स्तुति करना, ये बहन बहुत अच्छी है, मुरली में आता है, बाबा ये बहन बहुत अच्छी है, बाबा ये बहन बहुत मीठी है, बाप कहते हैं बहन मीठी नहीं है, मुरली मीठी है, जिससे मोह होता है वही अच्छी लगती है, अच्छा लगता है, उसी का चिंतन, उसी का गुणगान मन में करना और किसी के सामने करना, उसमें ये भी खूबी है, उसमें वो भी खूबी है, उसमें वो विशेषता है, उसमें ये विशेषता है, विशेषता दी किसने, उसको बोल रहे हैं, दाता कौन है देने वाला, दाता को भूलकर व्यक्ति में फंसना और फिर अपने प्रेम को, अपने मोह को और अपनी वासना को ज्ञान और योग और सेवा की संज्ञा देना आत्मवंचना है, सेल्फ डिसेप्शन, आत्म प्रवंचना, हिपोक्रेसी, सेल्फ लाइंग। दूसरों को हम कितना भी धोखा दे, पर जो स्वयं को धोखा देता है वो सबसे बड़ा धोखेबाज है। अंदर बाहर अलग अलग जो व्यक्ति है, 1969 अव्यक्तवाणी खौफनाक, बाबा ने ऐसी आत्माओं के लिए शब्द प्रयोग किया है खौफनाक, जो अंदर कुछ बाहर कुछ, पाखंड की परिभाषा एक शब्द में, बाहर कुछ अंदर कुछ, जो बोल रहा है वो कर नहीं रहा है, कुछ और ही कर रहा है, बोले तैसा साले त्याची वंदना पाऊले, अंगे झाड़ी ना अंगे अंगन त्याचे दायित्व करी ना, ऐसा पुरुष यदि मुझे मिल जाए तो क्या करूंगा, शरीर से बुहारूंगा, झाड़ू लगाऊंगा उसके आंगन को, प्रशंसा। चौथा स्वरूप केली, केली अर्थात खेलना, साथ साथ खेलना, ये ब्रह्मचर्य की आठ बातें, उसमें ये चौथा संस्कृत शब्द केली अर्थात खेलना, ये तब लिखा हुआ है द्वापर युग में, साथ साथ खेलना और फिर आकर्षण। अब वो खेलना तो नहीं रहा, परंतु एक दूसरे प्रकार का खेलना है, मोबाइल से खेलना, एक मैसेज इधर से एक मैसेज उधर से, टॉक्स, चिट चैट, फैमिलियरिटी, घनिष्ठता, टुगेदरनेस, योगी का पतन कराएगी, योगी अर्थात सावधान, तस्मात जागृतः, जो निरंतर जागा हुआ है, कहीं फंसता नहीं है। तो ये जो भी खेल है, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स जिसको कहते हैं, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स मोर ऑफन देन नॉट इन द लॉन्ग रन टर्न इन टू सेक्सुअल फ्रेंडशिप्स, जो आध्यात्मिक मैत्री थी धीरे धीरे वासनात्मक मैत्री में रूपांतरित हो जाती है। इसके लिए इस तरह की मैत्री की आवश्यकता नहीं है। विश्व भर के भिक्षु और भिक्षुनी, नंस और फादर्स, श्रावक और श्रावणी, सन्यासी और सन्यासिनी, यो का जो पतन हुआ अलग अलग धर्मों में, विश्व भर में, अलग अलग देशों में, ये एक ही कारण रहा, दोस्ती। संबंध रखना अच्छी बात है, परंतु डिटैच्ड, भाग भाग कर शादी की है लोगों ने, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों ने, यज्ञ के इतिहास में, और बाद में पछताते रहे। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। क्षणिक सुख, क्षणिक आवेग, जीवन भर का पश्चाताप। चौथा, पांचवा, गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, एकांत में बैठ के बातें करते रहना। ज्ञान योग की शुरुआत वहां से होती है, या सेवा की, और धीरे धीरे संबंध बढ़ते जाता है। गुह्य भाष्य, किसी भी स्थान, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में यदि हो रहा है, वो भी ब्रह्मचर्य का खंडन है। इसके लिए सावधान। विधि एक ही है, सतत जागरण, निरंतर सावधानी। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी, ऐसा कहा गया है। विजिलेंस अर्थात जागरण। यदि स्वतंत्र होना है, कोई कहता है मुझे बंधन नहीं चाहिए, यदि तुम्हें स्वतंत्र होना है, मुक्त होना है, यदि आजादी चाहिए, एक प्राइस भाव चुकाना पड़ेगा, वो है निरंतर जागरण, इटर्नल विजिलेंस। क्योंकि आज तक जितने गिरे हैं, वो तब तब गिरे हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब वो बहुत वीक थे, कमजोर हो गए। 23 घंटा कोई ज्ञान के चिंतन में रहता है, मनन में रहता है, अध्ययन में रहता है, 23 घंटों में 1 घंटा कमजोर पड़ जाता है, किसी विशिष्ट स्थान पर जाकर या किसी विशिष्ट समय में, हो सकता है रात को सोने से पहले का वो समय है, या ऐसा वो समय है जब कोई विशेष ज्ञान चिंतन नहीं चल रहा, उसी समय माया आएगी। माया तब नहीं आएगी जब अमृत वेला में हो और मुरली क्लास में हो, या संगठन में हो, या भट्टी में हो। माया तब आएगी जब कमरे में अकेले हो। माया महाठगनी हम जानी, लिख कर कभी नहीं आएगी कि मैं माया हूं। गोरंभा आई थी पहले विश्वामित्र की तपस्या करने, डायरेक्ट आक्रमण किया, शादी करनी है, शादी शाप दे दिया बिल्कुल उसको, वो पत्थर बन गई। इसलिए मेनका जब आई तो उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी, सेवा की उसकी बहुत, कई मास तक सेवा करती रही, सेवा करती रही, सेवा करती रही, फिर आप ही सब कुछ हो गया। माया कभी भी डायरेक्ट नहीं आती, इनडायरेक्ट, परोक्ष उसका वार होता है, अपरोक्ष कभी नहीं होता है, डायरेक्ट कभी नहीं होता है, जब भी वार होगा वो परोक्ष होगा, इनडायरेक्ट। उसके बाद में है संकल्प। संकल्प अर्थात प्लानिंग करना उस व्यक्ति से मिलने की। गुह्य भाष्य, सिक्स्थ, विचार, प्लानिंग, कहां मिले उसके लिए योजनाएं बनाना। उसके बाद है अध्यावसाय, सेवेंथ, अध्यावसाय अर्थात वास्तविक में मिलना। और लास्ट क्रिया, दी एक्ट, जिसे बाबा कहते हैं काम कटारी, आज की मुरली में भी है वो। ये 8 रूप है उसके, ये दूसरी माया है ब्रह्मचर्य भंग। इस पर बहुत विस्तार से हमने कहीं कहीं और कहा है, अभी समय कम है इसलिए उसको छोड़ देते हैं, नहीं तो इसका बहुत सारा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। तो पहला बताया अवज्ञा, दूसरा बताया बी फॉर ब्रह्मचर्य भंग, तीसरा है सी कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस, सुख और सुविधाएं। जितना व्यक्ति सुख और सुविधाओं के अधीन होता है, तपस्या अपने आप कम हो जाती है। तपस्या अभाव में करनी होती है। जितना लिप्त होगा सुखों में और साधनों में, आराम में, तपस्या गुप्त लुप्त हो जाएगी। हम तपस्वी है ये भूलना नहीं है। कुमार जीवन अर्थात तपस्वी जीवन, कुमार जीवन अर्थात ब्रह्मचारी जीवन, और कुमार जीवन में ब्रह्मचर्य से बड़ा और कोई धन नहीं, और कोई साधना नहीं। यज्ञ के इतिहास में 636 से लेकर आज तक जितने लोग इस यज्ञ से बाहर गए, एक ही कारण से गए। ऊपर से दिखाई दे रहा है झगड़ा हो गया, ऊपर से दिखाई दे रहा है इसका उसके साथ बनती नहीं, ये है वो है, ये सब बाहर के कारण है, अंदर से एक ही कारण है, वासना, जो उसे ले गई यहां से घसीटते हुए, परमात्म यज्ञ से घसीटते हुए ले गई संसार के विकारों में। क्यों भगवान चाहे साकार मुरली या व्यक्तवाणी, बाकी सब के लिए ढील है, परंतु जब काम की बात आती है एकदम धर्मराज का रूप। कोई मुरली ऐसी है कि हाँ ठीक है काम चलेगा, ऐसा है? क्रोध के लिए है, लोभ के लिए, अहंकार के लिए, मोह के लिए, काम के लिए कभी सुना? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि द्वापर युग से देवताएं जो गिरे इसी के कारण गिरे। सुख और सुविधाओं में तपस्या खो ना जाए। यदि है तो बहुत अच्छा, प्रयोग करो, परंतु एक समय यह भी आएगा कुछ नहीं होगा। आज सब मिल रहा है, कल कुछ नहीं मिलेगा, ना पानी होगा, ना भोजन होगा, ना कुछ होगा। है तो बहुत अच्छा, प्रकृति सुखदाई है, एक दिन होगा विकराल रूप धारण करेगी। इसलिए प्रकृति की भी सेवा करनी है। हरेक को दिन में दो बार कंपल्सरी पांच तत्वों को सकाश देनी है। इन तत्वों जो हमसे रुष्ट है, वो हमारी गलती के कारण, हमारी अवज्ञा के कारण, हम दोषी है। प्रकृति ने हमारे लिए द्वाप सतयुग से क्या क्या किया और हमने उसके साथ क्या कर दिया। जो भी आपदाएं आ रही है हमारी वजह से, हर एक अपने आप को दोषी समझे और अपनी गलती को ठीक करे। प्रकृति से माफी मांगना, प्रकृति को सकाश देना, प्रकृति को शक्तिशाली बनाना, प्रकृति का और एक्सप्लाइटेशन शोषण न करना, ये प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्य है। तो सुख सुविधा में तपस्या ना खो जाए। उसके बाद में है डी, डिजिटल, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन न्यूज, माया ही माया है। गेम्स ही गेम्स खेलते रहते, न्यूज ही न्यूज देखते रहते। न्यूज का भी एडिक्शन है, ये पार्टी ने ये किया, वो पार्टी ने अब क्या कहा, उसका भी एडिक्शन है। मैसेजेस मैसेजेस भेजते रहते बस, जिसका कोई मतलब नहीं है। इंटरनेट, डोंट गो टू इंटरनेट विदाउट पर्पस, इस वाक्य को लिख के रखना है। डोंट गो टू यूट्यूब विदाउट अ पर्पस, बिना पर्पस के निष्कारण किसी भी ऑनलाइन चीज में जाना नहीं, क्योंकि वो जंगल है, भटकाएगा। कोई पर्पस के साथ जाना, देखकर वापस आ जाना। यदि ऐसे ही बैठे रहे तो शुरुआत ब्रह्मा कुमार से, अंत शूद्र कुमार से। इसलिए डिजिटल माया के रूप को जानना है, डिजिटल व्रत धारण करने हैं। शिवरात्रि हुई ना, उसमें भक्त व्रत करते, हमें डिजिटल व्रत करना है, अनकंट्रोल्ड डिजिटल हैबिट्स चेक करना है, क्योंकि ऊपर से तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब ठीक चल रहा है, सेवाएं कर रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली क्लास में आ रहे हैं, पर पतन सूक्ष्म है, इनविजिबल है, अदृश्य है, बाहर वाले कुछ भी देख नहीं पाते। इसलिए यह हमारी व्यक्तिगत सूक्ष्म साधना है। उसके बाद में ई, ईटिंग, भोजन। योगी के भोजन में तीन चीजें महत्वपूर्ण है, सम्यक आहार में तीन चीजें है, द राइट डाइट, मित आहार में तीन चीजें है। सबसे पहला, भोजन ऐसा ना हो जो उत्तेजना उत्पन्न करे, एक्साइटमेंट, इंद्रियों की उत्तेजना उत्पन्न करने वाला भोजन। दूसरा, आलस और प्रमाद लाने वाला भोजन। तीसरा, भोजन हेल्दी हो, स्वास्थ्यवर्धक, ऐसा ना हो कि जिससे स्वास्थ्य तो नहीं मिल रहा है, केवल मोटापा और बीमारियां बढ़ रही है। तीन चीजों का ध्यान रखना है, और जो भी भोजन खाओ स्वीकार करके, भोग लगाकर स्वीकार करना भगवान को, और जो खुद भोजन बनाते हैं वो उसको और योग युक्त होकर बनाए। कितने लोग हैं जो खुद बनाते हैं? यह बहुत बड़ी साधना है, सबसे बड़ी साधना है कुमार जीवन की। कुमार जीवन में किसी के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहना, यह सबसे बड़ी कमजोरी है। मुख्यतः जो मधुबन के बाहर रहते हैं, जितना हो सके खुद ही उसको बनाए तो बहुत अच्छा। तो भोजन, उसके बाद में एफ, फैशन। फैशन के ढेर सारे रूप और सूक्ष्म रूप है, कपड़ों से लेकर तो, हेयर स्टाइल से लेकर तो, टैटू और बहुत सारी चीजें करते रहते हैं लोग। हमारा जो पोशाक है वो सादगी पूर्ण हो, ऐसा ना हो कि कोई हमारी तरफ आकर्षित हो जाए, और मुख्यतः हमारी देह की तरफ आकर्षित हो जाए। और उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हमने ही कुछ किया था जिसकी वजह से वो व्यक्ति आकर्षित हुआ है। जरूर किसी को इम्प्रेस करने का प्रयत्न किया होगा, जरूर किसी को दिखावा करने का प्रयत्न किया होगा कि हम में ये है। इसलिए इस संसार की जो फैशन है, इस संसार की जो चीजें हैं, फैशन केवल वस्त्रों से संबंधित नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, गाड़ी से लेके तो सामानों से लेके ढेर सारी चीजें, स्टेटस वाली जो भी चीज है वो सब उसमें आती है। और लास्ट है जी, गॉसिप्स। गॉसिप्स अर्थात झरमोई झगमोई, आज की मुरली में भी है, कौन क्या कर रहा है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ये भाई ने ये किया, वो बहन ऐसी करती है, ये बहन पहले इस सेंटर में थी अब उस सेंटर में है, क्यों, तुम्हें किसने बोला इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ये यहां ये क्यों हो रहा है, वहां वो क्यों हो रहा है, मधुबन में ऐसा क्यों होता है, यहां वैसा क्यों होता है, ये किसने बनाया रूल, ये सब में जाना नहीं। कुमार जीवन का सिंपल सा सिद्धांत, यदि एप्पल है उसको यदि चाकू पे फेंको तो कौन कटेगा, एप्पल, और चाकू उसके ऊपर फेंको तो कौन कटेगा? एप्पल। चाकू को कुछ नहीं होगा। इसके लिए किसी को हिलाने की कोशिश नहीं करना, जिसको जहां है वहां रहने दो। हमारा संघर्ष किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारी साधना तपस्या आंतरिक है। यहां आने का लक्ष्य सेवा है, बस। सेवा और अपनी तपस्या, बस। किसी के जीवन में इंटरफियर नहीं करना है। अध्यात्म अध्यात्म, कौन क्या करता है, ये ऐसा क्यों करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब में जाना ही नहीं है। जितना उसमें इन्वॉल्व होंगे, कटेगा कौन? वो एप्पल, वो सेब। सेल्फ सेफ्टी, बाहर हो जाओ। दूसरों को परिवर्तन करने का ठेका हमारा नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल स्वयं को सेफ रखना है, दैट्स इट, बस। जिसको जो करना है करने दो। वो बैठा है भगवान, सभी उसके बच्चे, वो देख लेगा किसको क्या करना है। तो ये भी एक माया है, गॉसिप्स, चरमोई जगमोई, इधर की बातें उधर, ताक झाक करना, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, इसने क्या किया, उसने किया, इसमें ये खामी है, उसमें वो खामी है। व्हाट इज दैट टू यू? ये सब में जाना ही नहीं है। तो ऐसे माया के ये कुछ रूप, विस्तार तो बहुत है, परंतु समझदारों को इशारा काफी है। क्लास यहां पूरा हो गया, ये नहीं समझना, मन में जो बातें बताई उसका विस्तार करना है, सोचना है। अवज्ञाय, ब्रह्मचर्य भंग, सुख और सुविधाओं में ना डूबना, डिजिटल माया के, डिजिटल नगरी की अनजानी गली का पता करना है कौन कौन सी है। भोजन, फैशन और झरमोई झगमोई, सात रूप है। और यदि इनमें से किसी भी एक में हम फंसे हैं, संकल्प से उसे बाहर निकालना है, शक्तिशाली संकल्प। और आज का बड़ा शुभ दिन है, जब अभी सभा में बैठेंगे तो इतनी बड़ी सभा और इतने सारे लोगों का संगठित बल काम करेगा। और ऐसी सभा के बीच जो संकल्प किए जाते हैं, उनमें अतिरिक्त शक्ति होती है, एक्सेस पावर होती है। सबके बीच में बैठते हुए ये समझना कि मैं अकेला ही हूं बस, और ये साधना मेरी अपनी है, मुझे अपने आप को शक्ति से भरना है, और वो हर विकार से स्वयं को मुक्त करना है, जो सब कुछ करने के बाद भी नहीं जा रहा है। वो कौन सा एक संस्कार है, वो कौन सा एक विकार है, वो कौन सी एक एडिक्शन है, वो कौन सी एक आदत है, वो कौन सा एक डिजिटल अट्रैक्शन है, वो कौन सा एक फिजिकल अट्रैक्शन है, वो कौन सी एक बात है जो सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं जा रही। आज के दिन समर्पण कर देना, ठीक है? तो आज भट्टी का दिन है, तो जितना हो सके अंतर्मुखी रहना है, आत्मचिंतन करना है, खुद को देखना है और स्वयं को सभी खामियों से मुक्त करना है और शक्तिशाली बनाना है। ओम शांति।